ओम शांति। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? हाल खुशहाल, चाल फरिश्तों की चाल। शिव बाबा जब सत्य गीता ज्ञान दिया ना, वो गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तब पिता परमात्मा ने आकर के सत्य गीता ज्ञान दिया। तो महाभारत में प्रसंग आता है, संजय जो था वो सारे अंधों को, धृतराष्ट्र उसको दिखाई नहीं देता था, युद्ध के मैदान में क्या क्या चल रहा है वो सारे कमेंट्री कौन देता था? संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, दिव्य दृष्टि के माध्यम से युद्ध के मैदान में चलने वाले हर प्रसंग को अंधों तक पहुंचाना, अंधों तक पहुंचा करके उसके बारे में जानकारी देना संजय का काम था। इसको ही, जिसको ही बाबा ने इस यज्ञ में संजय किसको कहा गया? जगदीश भाई जी को कहा गया। तो जब संजय धृतराष्ट्र को ज्ञान सुना रहे थे तो भगवान के पास तो ऐसे तर्कश में ऐसे ऐसे बाण छिपे में, पता है आपको उस तर्कश से किस समय कौन सा तीर निकल आता है? आज से देखो, पुराने पुराने बेटे, आज से 40 साल पहले अगर पूछा जाए यज्ञ में तो शिविर कौन कराते हैं? तो शीलू दीदी कराती, उसके बाद में उषा दीदी का पता था 40 साल पहले, फिर समय अनुसार उसने एक तर्कश से एक तीर निकाला। उसके बाद शिवानी दीदी का किसी को पता था 40 साल पहले, वो छिपा हुआ फिर एक तीर निकाला। डॉक्टर सचिन भाई का पता था 40 साल पहले। समय अनुसार भगवान क्या करता, अपने तर्कश में से एक एक बाण निकाल करके इस युद्ध में जीत हासिल करवाना चाहता है। ऐसे भगवान के तर्कश से आज एक तीर निकलने वाला है, वो है हमारे महेश भाई। महेश नाम किससे जुड़ा हुआ है? महेश का नाम संबंध ही क्या जुड़ा हुआ है? विनाशकारी जुड़ा हुआ है। लेकिन ये महेश जो है स्थापना के कार्य के लिए संजय के साथ साथ हमारे जगदीश भाई से अंग संग रहने का आपको सौभाग्य मिला। बहुत कम ऐसी आत्माएं हैं जगदीश भाई को समझना, ऐसे महान आत्माओं को एक होता है देखना फिजिकली, एक होता है उनकी बुद्धिमत्ता को समझ करके उसको अपने अंदर समा लेना। ऐसी एक बुद्धि आपको प्राप्त है। पिछले 50 वर्षों से आप इस ज्ञान मार्ग में हो, 10 वर्ष दक्षिण भारत कर्नाटक में अपनी सेवाएं दी, 6 साल आपने दिल्ली भाई साहब के साथ रह करके सेवाएं दी, उसके पश्चात पिछले 35 वर्षों से माउंट आबू में रहकर, यहाँ भी भाई साहब जो रहते थे, भाई साहब का काम ही क्या था? जगदीश भाई जी का सत्य गीता ज्ञान को सरल तरल करके हर मानव मात्र तक पहुंचाना, वो आपकी विशेषता थी। उसमें कैसे आप सहभागी बन करके भाई साहब के गुणों को आपने अपने जीवन में अपनाए, उसका जरूर उनके संग का अनुभव हमारे बीच में रखेंगे भ्राता महेश भाई जी।
ओम शांति। आप सब मधुबन की बट्टी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि मधुबन में रहना कितना लोगों को मुश्किल है आप जानते होंगे ना। एक रात के लिए तड़पते हैं रहने के लिए, लेकिन आप लोगों को 3 दिन रहने का सौभाग्य मिला है। इन 3 दिनों का मैं विश्वास करता हूँ आप 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे, स्थान का समय का फायदा उठा रहे होंगे। पानीपत तो काफी पुराना सेंटर है, और दीदियों को देखता हूँ, बहनों को देखता हूँ, सब पुराने पुराने। और दीदी तो जगदीश भाई को तो अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा वाले तो बहुत बार मिलने का उनको अवसर मिला होगा। आप में से कितने लोग जगदीश भाई को देखा है? हाथ उठाए। अच्छा, जिन्होंने उनसे मिला है पर्सनली, वो हाथ उठाए। संसार में जी पानी पड़ता है, संसार में इंसान को अपने जीवन में आदर्श जीवन जीने के लिए कुछ सैंपल्स होते हैं, आदर्श जिसको कहते हैं। जैसे सत्य अहिंसा के लिए गांधी जी को फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्य सत्यता और आध्यात्मिकता के लिए विवेकानंद जी को फॉलो करते हैं, और गृहस्थ जीवन में भी वैराग्य जीवन जीने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी को आदर्श रखते हैं, और वीर योद्धा अथवा स्वतंत्रता संग्राम के लिए सुभाष चंद्र बोस जी को चलो अनुसरण करते हैं। ऐसे ही इस हमारे अलौकिक सुंदर सुहावना इस ब्राह्मण संसार में भी कुछ आदर्श है, सैंपल्स है, जिनको हम मॉडल्स, रोड मॉडल्स कह सकते हैं या मार्गदीप कह सकते हैं, रास्ता दिखाने के लिए जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ना उस तरह। उनमें मुख्य है साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा किसके लिए सैंपल है? गृहस्थ जीवन में रहने वालों के लिए बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा सैंपल है। और कन्याओं के लिए मम्मा, और कुमारों के लिए, कुमारों के लिए कौन? जगदीश भाई। इस ग्रुप में कुमार कितने हाथ उठाए? आप सुना होगा भारत में यज्ञ आने के बाद जगदीश भाई साहब सबसे पहला जो कुमार है वो समर्पित हुआ। और सिर्फ कुमार नहीं, ये समर्पिता का जो सिलसिला है उनसे शुरू हुआ। 21 साल में वो समर्पित हो गए। 1952 में ज्ञान में आए, 1953 में सब कुछ छोड़ छाड़ के सेंटर में आके बैठ गए जबरदस्ती से। पता है ना उनकी कहानी, बड़ी दीदी कुंज दादी वो सब थे, लेकिन ये जबरदस्ती से आके मैं समर्पित हूंगा। वो कहते अरे ये तो ये कैसे आ गया? तो उसके बहुत बड़ी लंबी कहानी आपने सुना होगा। जगदीश भाई के जीवन को हम देखते हैं तो साकार बाबा और जगदीश भाई, इन दोनों के जीवन में जो साम्यता कहते हैं, एक समान, बहुत दिखाई पड़ते। मैं एक दिन वैसे बैठ कर सोच रहा था, अगर ब्रह्मा बाबा को पूर्ण रूप से फॉलो किया है वो जगदीश भाई है, कैसे? उदाहरण के रूप में एक छोटे छोटे बातें आपको मैं सुनाऊंगा। ब्रह्मा बाबा रोज 2 बजे उठा करते थे अमृत वेले। बाबा कहते ना ये ब्रह्मा भी बच्चों के लिए मक्खन तैयार करता है, गरम गरम हलवा तैयार करता है 2 बजे उठकर। वैसे जगदीश भाई साहब रोज रेगुलर 2 बजे उठा करते थे। आपने उनके अनुभव में सुना होगा, वो रहते थे इधर यहां के कमरे में। बाबा जब कमरे में, बाबा के कमरे में लाइट जलती थी तब ये भी अपना लाइट जलाते थे। तो बाबा लच्छू दादी को बोला करते थे, बच्ची देखो जगदीश बच्चा उठाए तो बुलाओ। तो उन दोनों में इतना जबरदस्त जो लेवल कहते हैं ना कनेक्शन का, बहुत जबरदस्त। अगर समझ लो जगदीश भाई उठ गया तो बुला लेते। तो एक बार जगदीश भाई अपना अनुभव सुना रहे थे। आमतौर पर दादियां, मनोहर दादी हो, शांतामणि दादी हो, दादियां जब बाबा से मिलते थे कमरे में अपने समाचार सुनाते होंगे, बातें करते होंगे। तब जगदीश भाई वहां जाते थे बाबा के कमरे में, तो बाबा क्या करते थे, उनको भेज देते थे, बच्चे बाद में आ जाना, अभी जाओ। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बार बार आपको वो जो जिससे आप बात करते हैं वो कहेंगे भाई थोड़ा बाहर जाओ, बाद में आना, आपको कैसा लगेगा? बुरा तो लगता है ना। तो एक दिन मनोहर दादी ने कह दिया, बाबा वो जगदीश जब भी आता है हम लोगों को आप भेज देते बाहर, क्या बात है? तो बाबा ने बोला, बच्ची ये बच्चा आता है ना मेरे पास, तब वो ऊपर वाला आ जाता है, उसको कुछ डायरेक्शन देना होता है, इसलिए आता है। जगदीश भाई बार बार कहा करते थे, जैसे हम भगवान को जितना ढूंढा है ना भक्ति मार्ग में, जितना प्यार किया, जितना तड़पा है उसके लिए, उतना ही बाबा भी बच्चों के लिए तड़पता रहा, संगम युग आने तक ढूंढता रहा, देखता रहा। तो ये बात क्यों कहना है कि हम भी अपने आप को देखें, हम बाबा को कहां तक कितना ढूंढा है भक्ति मार्ग में। आप थोड़ा अपने जीवन को पलट के देखिए, मैं बाबा को कितना ढूंढा है और बाबा के लिए मैं कितना तड़पा है। तड़प में भी एक सुख होता है, और बाबा को मैंने कितना प्यार किया है, तो उसके अनुसार आपको भी बाबा का प्यार मिलेगा। ये अनुभव है आपको, होगा। एक बार ये भी कहा उन्होंने जगदीश भाई, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, बच्चे जब तुम बच्चे स्वर्ग में सत्युग में राज्य करेंगे तो मैं क्या करूंगा, परंदा में विश्राम करूंगा। फिर क्या करेंगे? और एक बार बोला था, जब वहां बैठ के मैं बच्चों को देखता रहूंगा कैसे मेरे बच्चे राज्य कर रहे। सुनिए बात। फिर बाबा ने कहा, द्वापर युग में जब आएंगे तब बच्चों को मैं देखता हूं कैसे दुखी हो गए, कैसे भक्ति कर रहे, कैसे मुझे याद कर रहे। फिर जब कलयुग आएगा तो बच्चे जो दुखी होकर मेरे लिए रोना पुकारना मैं सुनता हूं। मुझे संकल्प आता है जब मेरा पाठ आएगा, जब संगम युग आएगा, फट से बच्चों से मिलने के लिए आ जाता हूं। तो इसका मतलब पूरे कल्प बाबा की नजर हम बच्चों पर होती है। है नशा रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि विश्वतन दादा बार बार बोला करते थे, देखो जब भी आप कोई काम करो, कोई संकल्प करो, कहीं भी जाओ, ये याद रखो बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे देख रहा है। तो ये पॉइंट वहां कनेक्ट मेरे को हुआ, बाबा ने बोला तब बच्चे मैं पूरे कल बच्चों को, बच्चों की लीला देखता रहता। तो इसलिए हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं, हम पूरे कल भगवान के नजर से हटते नहीं। तो वैसे भाई साहब कह रहे थे, मैं ढूंढता 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 कहां कहां गया था, यहां तक कि मैं कराची भी गया था, सिंध हैदराबाद भी गया था, बोल रहे थे अज्ञान काल में जब वो मुल्तान में रहते थे, ढूंढते ढूंढते वहां गया। वहां तो देखा मैंने सफेद कपड़े वालों को, लेकिन पता नहीं पड़ा। मतलब खींच होती थी। जब पहले बार उन्होंने बाबा से मिला तो आप अनुभव देखा सुना होगा ना, वो रात को सोए, सोने पर भी बाबा 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 कहते रहे। जब आंख की खोले क्या हुआ, सामने बाबा खड़े हुए थे आधी रात। तब बाबा ने बोले, बच्चे क्यों, मैं आया हूं ना, मैं आया हूं ना, तब मिले हुए ना। तो इस तरह जितना जितना हम बाबा के प्रति हमारे में तड़प, जिसको बोलते हैं ना इंटेंस लव, गहरा जो प्यार बाबा के प्रति है, उतना उतना बाबा हमें अनुभव कराते हैं। ये अनुभव उन्होंने हर रोज करते थे। शायद आप लोगों ने उनका कमरा देखा होगा शक्तिनगर में, किसी ने देखा है? तीसरी मंजिल पर कमरा है उनका, था, अभी तो बदल गया है। एक छोटा सा कमरा रहता था, आपने भी बाबा का कमरा देखा होगा, पहले कैसा था अभी कैसा, पहले तो बहुत छोटा था। जब हमने बाबा से बाबा का कमरे में पर्सनल मुलाकात की, तब वो जो दरवाजा है ना, वो जो सिंगल सीट है, उतना ही बाबा का कमरा था। जो उनकी गद्दी थी, तो वहां बाबा अवैध बाप दादा बैठा करते थे, हम वहां जाके बाबा से मिला करते थे। इतना छोटा सा कमरा, उतना छोटा सा कमरे में साकर बाबा रहा करते थे, सादा जीवन। और ये भी आप जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा अंत तक उनका बाथरूम कैसा था, लेवेट्री, आप जानते हैं ना, उधर जिसको हम जो दो नंबर के जाते हैं, क्या कहते हैं, लेवेट्री, ऊपर छत ही नहीं था, जो ये है ना, ये यहाँ पेड़ है इसका, हाँ हाँ, जनरल उस कोने में, उस पर जो ये होते हैं ना खजूर, खजूर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, उसका था, चारों तरफ टाट बांधा हुआ। हम कहते हैं ना बाबा, जिसको नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं ब्रह्मा बाबा, तो उन्होंने ऐसे स्थान पर स्नान करते थे बिना छत वाला। क्यों? बाबा के पास तो सब कुछ था ना, बच्चों के लिए नया नया मकान बना के देते थे, खुद तो अच्छे बाथरूम, अच्छे लैट्रिन, अच्छे कमरा बना सकते थे। नहीं, ये राज है, जो साधना करता है वो साधक, जितना सादा जीवन बिताता है, जितना त्याग करता है, उतना सिद्धि प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधन ज्यादा यूज करता है, सुख का अनुभव करता है, वो पुरुषार्थ कर नहीं सकता। ये बाबा जानते थे, इसलिए बाबा एकदम सिंपल, बच्चों के लिए सब सुविधा दिया लेकिन खुद यूज नहीं किया। वैसे ही जगदीश भाई के जीवन भी ऐसे ही रहा, उन्होंने अपने लिए कुछ भी पर्सनल कुछ नहीं रहा। कई लोगों ने उनको ऑफर किया, एक आप कार देंगे फोर व्हीलर, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने सेंटर के लिए एक मारुति वैन रखा, वैन जानते हैं ना आप लोग, ग्रुप में जाने के लिए, वो भी कैसे, सबसे पहले बहनों जहां जाते हैं उनके सेवा के लिए रखा, उन्होंने खुद नहीं गया, वो बस में जाते थे या ऑटो रिक्शा में जाया करते थे, अगर जगह है तो उनको बैठ के जाते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहनों को आगे रखा, माताओं को आगे रखा, वैसे इन्होंने भी बहनों को आगे रखा। उनकी कहानी तो सुनी होगी, जब दिल्ली में गर्मी होती है तो कैसे होती है, हवा भी चलती है तो इतनी गर्म गर्म हवा चलती, ऐसे गर्मी में वे क्या करते थे बहनों के लिए, आइस का कंधे पर उठा के ले आते थे, पानी में मिला के पिलाते थे। हाँ भाई, हम लोगों में कोई करते हैं बहनों के, ऐसे खातरी करते हैं, ख्याल रखते हैं बहनों की, ये बहनों से सेवा लेते हैं, भाई हम इतना सेवा करके आए, एक ठंडा ग्लास भी नहीं देती है, लेकिन देखिए, मतलब सेवा माना सेवा, वो बहने माना टीचर नहीं, अपनी सगी बहन जैसा वो पाल देखते थे, वो ऐसा पालना भी देते थे। उसके अलावा आपने देखा होगा उनका कमरा जो थर्ड फ्लोर में था, एक पलंग था, एक अलमारी थी, वो पलंग ही उनके लिए सब कुछ है, बैठने का, लेटने का, सोने का, लिखने का, और एक छोटी सी टेबल भोजन करने के लिए। ऐसा नहीं वो गरीबी घर से आए थे, उनके जो वंशज है, वो जो मुल्तान के जो राजा था, रणजीत सिंह कुछ नाम है, उनके दरबार में वो दीवान थे, उनका परदादा, और उनके पिताजी बड़े लैंडर थे, और उनके जो चार भाई थे वो सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, कोई वकील, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई टीचर, लेकिन त्याग माना त्याग, क्योंकि जहां त्याग है वहां भाग्य, भाग्य बनता है, त्याग से ही भाग्य, त्याग में भाग्य और त्याग ही भाग्य है। तो उसे भी आप, तो वो भी कहानी सुने होंगे आप शुरुआत में, जब ये दिल्ली में सेवा शुरू हुई, वो कपड़े पहनते थे, कैसे पहनते थे, कि चूड़ीदार पैजामा होते थे, वो पैजामा पहन के ऑटो रिक्शा में जाते थे, साथ में सुई धागा भी जेब में। अभी तो हम लोगों को 10-10 जोड़ी कपड़े, 10-10 साड़ियां, 10-10 ब्लाउज, 10 जोड़ी जूते चप्पल, इतने सारे सुविधा मिल रहे, लेकिन उस समय नहीं, एक दो जोड़ी कपड़े होते थे, उसी में वो लोग वीआईपी सेवा करने जाते थे, प्राइम मिनिस्टर को मिलने, प्रेसिडेंट को मिलने। तो कहते हैं वो जो चूड़ीदार पहन के, पैजामा पहन के जाते थे ऑटो में, जब बैठते थे तो ये टाइट हो जाता था ना, यहां फट जाता था, तो वही ऑटो में ही बैठे बैठे सिलाई करके मिलने जाते थे। लेकिन हम लोग थोड़े से भी थोड़ा लग जाते। अभी अभी मैं सुबह कपड़े पहन के आया था क्लास में दूसरा, अभी तो किसी ने आम दिया, आम खाया तो थोड़ा गिर गया, तो कपड़े बदल के आया। हम इतना ख्याल रखते हैं आत्मा से ज्यादा अपने कपड़ों पर। देखो उन लोगों ने कैसे किया, तो ये सारे सीखने वाली बात ही है। अगर हम लोग पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, तो सादगी और त्याग बहुत जरूरी। वैसे जगदीश भाई, उनके बारे में भी वरदान कैसे मिला वो आपको पता होगा, लिखने का पता है ना, सुने होंगे, पढ़े होंगे। आप महाकवि कालिदास की कहानी सुनिए, पढ़ी होगी किसी ने, हाँ, उसको कैसा ज्ञानोदय हुआ। वो एक गडरिया था, भेड़ बकरी चराने वाला, ठीक है, उसने किसी ने, मंत्री ने उसको क्या किया, पकड़ कर ले जाके एक राजकुमारी से शादी करवाया। तो राजकुमारी वो तो पढ़ी लिखी, ये तो अनपढ़ कवार, तो उसने कहा, पत्नी ने कहा, तुम जाके काली की आराधना करो, भक्ति करो, पूजा करो, तो उसको वर मांगो। क्या वर मांगो, विद्या बुद्धि दे दो, मुझे विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, है ना। जब वो तपस्या करता है काली मंदिर में, काली प्रत्यक्ष होते हैं, कहते क्या चाहिए, तो मुझे विद्या बुद्धि चाहिए, नहीं तुमको राज्य देता हूं, देती हूं, बहुत खूब संपत्ति देती हूं, ले लो, नहीं मुझे विद्या बुद्धि चाहिए। तो उसने क्या किया, उसके जीव पर ओम लिखा, तब वो क्या हो गया, वो कालिदास बन गया। नहीं कहानी सुनी होगी ना, ये कहानी भाई साहब के साथ तुलना करे तो ऐसे ही बन जाता है, उनको वरदान कैसे मिला। एक बार बाबा सब बच्चों को लेके पहाड़ी गए थे घूमने, ये कहानी सुनी आप लोगों ने, तो वहां बाबा ने बोला, जंगल में जाने के बाद जगदीश भाई के बच्चे छोटे छोटे लकड़ियों को ले लो, चुन के लकड़ी के एक गांठ बना के लेके आए। तो रास्ते में बाबा ने बोला, बच्चे तुम जगदम्बे की आरती जानते हो, तो भाई साहब ने बोला, बाबा जानता था लेकिन आपने बोला सब कुछ भूल जा, तो भूल गया, याद नहीं, तो आपने बोला ये सारा भूसा है, वो है, ये है, तो मैंने निकाल दिया। थोड़ा एक लाइन तो आती होगी ना, कि हाँ ठीक है। तो फिर बाबा ने बोला अभी हम जाएंगे ना पांडव वन में, यहाँ तो मम्मा आएगी गेट पर, तो उसके पांव पर ये लकड़ियां जो रखे आरती गाना। तो ठीक है, तो आए मेन गेट पर, मम्मा आई तो जगदीश मैं ने वो जो विधान भक्ति मार्ग का जो लकड़ी रख के आरती गाए। तो कहते हैं मम्मा बहुत मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो उसका पूरा होने के बाद बाबा ने बोला मम्मा एक जगदीश की बुद्धि में बैठ जाओ। फिर थोड़ा समय रुकने के बाद फिर बाबा ने बोला बच्चे बैठ गई? तो मम्मा ने क्या कहा, हाँ बाबा। उसके बाद बाबा ने जो उनके लिए एक किताब लिखने की एक कहानी थी वो भी आपने सुना होगा। बाबा ने कहा एक किताब लिखो, इन्होंने लिखा हिंदी में। तो बाबा ने उसको कहा ये सब दादियां है ना, मनोहर दादी चिंतामणि दादी, ये सब दादियों को इनको दे दो करेक्शन करें। उन्होंने सबको दिया, जब करेक्शन होके आया ना तो ओरिजिनल सब खत्म हो गया था, सब अपना अपने ऐड किया था। तो जाके दिखाए बाबा को, बाबा इन्होंने ऐसा कर दिया, क्योंकि दादी उनके तो हिंदी नहीं थी ना, सिंधी भाषा थी, वो सारा उन्होंने सिंधी शब्द ऐड कर दिया था, मतलब टोटल उसका रूप रंग बदल गया था। तो फिर तुमने ये क्या लिखा इतना करेक्शन से? मैंने कहा बाबा मैं तो सही लिखा था लेकिन ऐसा हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चे आज से तुम जो भी लिखोगे वही फाइनल है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से डायरेक्ट बाप दादा से उनको लिखने का, साहित्य की रचना करने का जो उनको वरदान मिला। ऐसे इस तरह से हम बोलते जाए तो बहुत विशेषता है। लेकिन आज का जो टॉपिक था तो मेरा अनुभव उनके साथ का क्या रहा, मैं थोड़े से सुना देता हूं। मेरा अलौकिक जन्म हुआ 1974 में, मैं पढ़ता था उस समय यूनिवर्सिटी में। तो ज्ञान मिलने के बाद मेरा सबसे पहला जो सेवा शुरू हुई, इनका आर्टिकल था एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और सामाजिक सेवा या समाज सेवा, उस लेखन को उस रीजनल लैंग्वेज में अनुवाद करने का पहला जो सेवा थी वो, मतलब मेरी सेवा साहित्य की हुई और इससे लिखा हुआ आर्टिकल से शुरू हुई। तो उसके बाद तब से लेकर आज तक मेरा ये जो सेवा है वो साहित्य विभाग में ही सेवा है। मैं 10 साल वहां कर्नाटक में एक रीजनल लैंग्वेज मैगजीन का एडिटर रहा। फिर उसके बाद मैं एक बार यहाँ मधुबन आया था, तब 10 साल के बाद मैं दादी से कहा दादी मुझे मधुबन में रहना है। तब दादी को पता था मैं लिटरेचर में सेवा करता हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा देखो महेश तुम प्रिंटिंग में जानकारी है तुमको, तुम प्रिंटिंग कराते हो और मैगजीन छपवाते हो, अगर तुमको यहीं रहना है तो ये काम करो तुम दिल्ली जाओ, आत्म प्रकाश पे कृष्णा नगर में अकेला है, उसके एक साथी चाहिए तुम वहां जाओ। तो मैंने कहा नहीं दादी मुझे मधुबन में रहना है, भले मधुबन में रहो लेकिन एक साल के लिए वहां जाओ। तो मैंने कहा एक साल क्या बड़ी बात है? दादी ने कहा ठीक है दादी एक साल। तो जो हम वहां आंगन में खाने के लिए जाते ना साइड में जो गली है, वहां 2-3 मधुबन वाले भाई खड़े हुए थे। तो मैं हाँ बोल दिया ना एक साल के लिए, वो लोग हंसने लगे, बकरा फंस गया। तो मुझे उस समय कुछ समझ भी नहीं आया। तो गया एक साल वहां सेवा किया, तो वहां तो ऑफिस का जो भी है सिस्टम वगैरह किया। फिर एक साल पूरा होने पर फिर आया, फिर दादी ने कहा दादी एक साल पूरा हो गया मैं आ रहा हूं। तो दादी ने कहा नहीं और एक साल जाओ। तो चलो और एक साल हो गया। फिर तीसरा साल आया तो दादी आ गया, देखो वहां तुम्हारी चार्ट बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं टोटल अकाउंट्स बैंक वगैरह सब मुझे पहले अनुभव था, उसको मैंने वहां स्टार्ट किया। तो वहां एक सिस्टमेटिक एक लेवल में आ गया था। तो भाई वो वहां के लोग तुमको चाहते हैं, थोड़ा और एक साल रहो। मेरे को तो रोना आ गया, अरे एक साल के तीन साल बिता दिया दादा, मैं क्या करूं। तो फिर दिन रात में वहां योग करते रहे, बाबा मुझे यहां कहां फंसा दिया मुझे तो यहां रहना नहीं था, मधुबन में रहना, तो यहां कैसे रहे। तो बाबा ने दो तीन दिन लगातार अमृत वेले जैसे सामने साक्षात्कार जैसे, बच्चे चिंता मत करो, तुम्हारे से मुझे विशेष कार्य कराना है, इसलिए है थोड़ा धीरज रखो। तो फिर चार साल हो गए, पांचवा साल जब आया तब मीटिंग में एक चर्चा हुई कि जब वहां से बुक्स आते थे ट्रेन में ट्रक में, बहुत डैमेज होके आते थे, तो इसलिए उन्होंने फाइनल किया प्रिंटिंग प्रेस ही शांतिवन शिफ्ट करेंगे। तो फाइनल हो गया, तो मैं इतना खुश हुआ, बाबा मेरे लिए, सिर्फ मेरे को तो शिफ्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस के साथ मुझे शिफ्ट किया। तो वहां दिल्ली के एक अनुभव ये है कि जब 1987 में जब मैं कृष्णानगर गया, तो आपको आत्म प्रकाश भाई को तो जानते हैं, बड़े हंसी मजाक वाले हैं, वो उन्होंने मेरे को क्या बोला, वो वहां से शक्तिनगर से जो ज्ञान अमृत वर्ल्ड रिन्यूअल का जो संपादकीय होते हैं ना, उनको जगदीश भाई साहब से लाना था। उन्होंने क्या बोला मेरे को, ये नहीं बोला तुम जाके लेके आओ, मुझे कहा देखो महेश, जगदीश भाई आपको याद कर रहे हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं, जाके मिल के आओ। तो मैंने, मुझे बड़े खुशी हो गई, अरे इतने बड़े भाई साहब मुझे मिला रहे, बुला रहे हैं मिलने के लिए। बड़े नाद से गया वहां, वहां जाने के लिए दो बस चेंज करने पड़ते, 45 मिनट लगता है लगभग सुबह सुबह। तो गया जाके छाती खोल के अंदर गया, जाके वहां के एक सेवादारी भाई को बोला, भाई मैं कृष्णानगर से आया हूँ, मेरा नाम फलाना फलाना है, तो भाई साहब मुझे बुलाया है मिलने के लिए। वो हंस पड़ा भाई साहब तुमको बुलाया, हाँ क्या काम है, मुझे नहीं पता, उनको ही पता वो कहते वो बिना अपॉइंटमेंट हो तो किसी से मिलते नहीं है, तो तुमको कैसे बुलाया, नहीं किसने बोला, आतम भाई ने बोले जाओ वहां बैठ, विजिटिंग रूम में बिठाए। बिठाने के बाद उन्होंने जाके भाई साहब से बोला, तो भाई साहब एक भाई आया, तो उन्होंने एक लिफाफा लेके आया तो दिया, तो बैठा रहा मैं, क्यों बैठे हो, देखो भाई साहब को मिलना है ना, अरे बुद्धू भाई साहब इसको देने के लिए बुलाया होगा, चलो। मुझे बहुत बुरा यार, मैं इतना खुशी खुशी से आए थे मिलने के, हमसे मिलना नहीं दिए, मिले भी नहीं, चलो ठीक है। तो उस दिन से मैं हफ्ते में दो बार आना जाना होता था, तो मैं जाता था सीधा जाके ऑफिस में बैठता था, उसको बोलता था, लिफाफा लाता था, मैं चला जाता था, ऐसा इधर उधर ना देखना है ना ये। तो ये भाई साहब वो सेकंड फ्लोर में आके देखा करते थे मेरे को, ये कैसा आता है कैसा जाता है, किस तरफ देखता है, बहनों को देखता है या उनसे बात करता है या भाई से देख, करीब से देखते थे। तो हमें इसको कोई खबर ही नहीं था, हम अपना सेवा किया चल पड़ा। तो उनको जो हिंदी और इंग्लिश लिपि इटैलिक जैसा होते थे, तो आम आदमी पढ़ नहीं सकता था, तो ऐसे चलता रहा, मैं उसको टाइप करता था, उसको सारा मैगजीन बनाता, सारा किया। एक साल पूरा हो गया, एक साल पूरा होने के बाद वैसे जैसे यूजुअली लिफाफा लेके मैं जा रहा था, तब वो भाई आया, भाई रुको, भाई साहब बुला रहे आपको, जाओ उनके ऑफिस में, सेकंड फ्लोर में जो था रिसेप्शन। तो मैं वहां जाकर बैठा रहा, तो दो मिनट के बाद आए, तो मैं बैठा हुआ था, खड़े हो गए, ओम शांति भाई साहब, सिर्फ बैठे बिठाया, फिर सारा मेरे बारे में पूछा, फैमिली बैकग्राउंड का, कौन कौन ज्ञान है, क्या है, कहाँ तक पढ़ा है, ये किया। तो फिर उन्होंने एक मेरे से प्रश्न पूछा, भाई मैं जो मेरी लिखत जो है ना वो ब्रह्म लिपि है, तुम तो साउथ इंडिया वाला है, तो मेरी हिंदी कैसे समझते हो। तो भाई साहब मुझे पता नहीं, मुझे समझ में आता था, क्योंकि मेरे एजुकेशन में हिंदी एक सब्जेक्ट था और एक संस्कृत था, इसके कारण मैं हिंदी लिखता था पढ़ता था, तो मेरे को तो समझ में आता है भाई साहब, तो ये तो कमाल है, क्योंकि मेरी लिपि मैं खुद ही पढ़ सकता हूँ। आपको जानते होंगे ब्रह्म लिपि बोलते हैं, हर एक के मस्तक पर ब्रह्म ने लिखा रहता है उसका भाग्य, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, वो सिर्फ किसको दिखाई पड़ता है, ब्रह्मदेव को। वैसे मेरे लिखे हुए सिर्फ मेरे को समझ में आते हैं, तुमको कैसे समझ में आते, पता नहीं भाई साहब। तो फर्स्ट एक उन्होंने किया, और उसके बाद 5 साल के बाद जब प्रिंटिंग प्रेस शिफ्ट होना था, तब उस दिन फिर बुलाए मेरे को, बुला के बिठाया, बिठा के देखो भाई आप लोगों ने बहुत अच्छी सेवा किया यहाँ पे, अभी वहां जा रहे हो मधुबन में, कितने भाग्यशाली है, हम तो यहीं रह गए दिल्ली में, तो आपका तो बहुत बड़ा भाग्य है। अच्छा, तो उतने में उन्होंने एक जग मैंगो शेक मंगाया था, मंगे करका तो पी लो, तो मैंने कहा बोल रहे तो फिर एक गिलास लेके पी के रख दिया और पी लो, नहीं भाई साहब नहीं बहुत हो गया। तो देखिए वो क्या, फिर उसको मेरे साथ बात करने लगे पूछने लगे बताने लगे, जो खाली गिलास था ना वो गिलास भरा, भर के मेरे को देते रहे, मैं देते रहे पीता रहा। वो जग खाली हो गया, मुझे बिल्कुल खबर ही नहीं है मैं पी रहा हूं। जब लास्ट में देखा जग खाली हो गया, वो हंसने लगे, पी लिया ना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बनवाया था। उनका योगिक शक्ति कितनी थी, तो वाइब्रेशन कितना पावरफुल था, मैं ये बताने जा रहा हूं। इतना पावरफुल था कि वो क्या, वो बातों में हमें इतना उलझ गए कि मैं क्या कर रहा हूं कुछ भी पता नहीं पड़ा। बिल्कुल वो जो कहते गए देते रहे हम करते गए। तो उनका देखने में बहुत गंभीर लगते थे, लेकिन उनके में दिल में जो प्यार था ना परिवार के प्रति बहुत जबरदस्त थे। जैसे बाबा कुमारों के लिए स्पेशल कहते ना उनको ऊपर उठाने के लिए, वैसे वे भी हर साल विवेकानंद जो जयंती होती है ना युवा दिना ये करते हैं, उस समय दिल्ली के सारे कुमारों को बुला के उनको ब्रह्म भोजन खिला के प्रोग्राम रख के ये करते, और उनको कुमारों को खास धारणा के लिए पक्के करते थे, खाने पीने में देखने में कैसे रहना है कैसे बचना है कुसंग से, इस तरह से स्पेशल क्लास किया करते थे। तो माताओं के लिए भी, तो माताओं को तो स्पेशल ये होता था उनका। देखिए एक बार क्लास हो रही थी, क्लास चल रही थी रात की क्लास, कोई प्रोग्राम था शायद, बारिश होगी तो हर माताओं को अपने वहां सेंटर वाले गाड़ी कारों से उनको घर पहुंचाया। तो एक बार वैसे क्लास कराते उन्होंने माताओं के बारे में बोल रहे थे, देखो हमारी माताएं इतनी श्रेष्ठ है कि उनकी सेवा और त्याग तपस्या का अगर हम एक कहानी बना दिया तो एक किताब बना तो एक ग्रंथ बन जाता। तो ये बात मेरे बुद्धि में बैठ गई। तो वो शरीर छोड़ने के बाद माताओं के कई अनुभवों का संग्रह करके वंदे मातरम नामक का किताब देखा होगा सुना होगा, दीदियों का है और कई माताओं का है, उसका एक किताब बनाया। तो इसी प्रकार उन्होंने एक बार विदेशियों के बारे में बात कर रहे थे, विदेशियों ने देखो धर्म अलग भाषा अलग संस्कृत और सभ्यता अलग, लेकिन वो बाबा के प्रति कितना वो बलिहार हुए हैं ये भी महिमा योग्य है। तब उस बात से प्रेरणा लेके प्रभु प्रेम के परवाने एक किताब आपने देखा होगा, सब विदेशी भाई बहनों का अनुभव की किताब है, ये सारे किताब वे जाने के बाद किया गया। तब इससे पहले जब उनके पास कैसे आया वो एक छोटी सी कहानी, जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तब फिर हमारा वही राग आलापना शुरू हो गया दादी के सामने, कौन सा मधुबन में आना है। तो शांतिवन में रहे हम लोग, सारे प्रिंटिंग प्रेस की जिम्मेदारी थी, आतंक भाई बाहर वगैरह जाते थे, तो फिर दादी एक बार शांतिवन आई तो फिर जाके दादी मुझे मधुबन आना है। तो कहते दादी ने कहा तुम पागल हो गए क्या, इतने सारे बाबा ने जिम्मेवारी दिया, इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है उसको संभाल रहे हो, संभालो। नहीं दादी मुझे मधुबन चाहिए, मधुबन के लिए मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोच लो। नहीं दादी, तो आतंक भाई से परमिशन लो, ये बड़ी दूसरी परीक्षा है। आतंक भाई हाँ बोला तो, लेकिन छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने बैठ के एक लंबा लेटर लिखा, वो लेटर ऐसा लिखा तो पढ़कर रो पड़ा। तो क्योंकि मैंने लिखा, देखो भाई हमने सेवा किया, मुझे कोई चाहिए नहीं, मेरे इतने सेवा में मैं एक पैसा का नुकसान आपका किया नहीं, कई कंप्यूटर के वो कई सेक्शंस मैंने एस्टैब्लिश किए, इसलिए मुझे छुट्टी दे दो, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो मधुबन का हूँ। तो फिर उसने ठीक है लेटर साइन करके दिया, मधुबन आ गया। मधुबन दादी ने कहा देखो भाई ठीक है ऐसा करो, ये ज्ञान सरोवर बन रहा था, ज्ञान सरोवर में बनने दो, आपको वहां बुलाएंगे। तो जब ज्ञान सरोवर बना तो आपको पता होगा जगदीश भाई साहब को वहां का डायरेक्टर बनने के लिए बात हुई थी, तो उन्होंने हाँ भी कहा था। तो फिर उन्होंने कहा मुझे एक हैंड चाहिए, तो कौन चाहिए? तो उनको पता पड़ा तो मैं ऊपर आने वाला हूं, तो मुझे महेश चाहिए। तो महेश चाहे तो फिर ठीक है। तो दादी ने कहा भाई जगदीश तुम्हारी मांगनी की है, तुम उनके पास जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करें, मुझे तो इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये इतने साल देखा तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, काम एक्यूरेट चाहिए, इतने साल तो हमने खूब सेवा की, अभी क्यों इनके हाथ में फंसना है। तो हाँ बोल के 3 मास तक ऐसे टालते रहा। तो एक दिन हमारे लौकिक सिस्टर आई थी, वो भी एक टीचर है यहाँ पे, उसको मार्केट लेके घुमा के वापस आया था दोपहर का 2 बजे। आपको मालूम होगा 2 बजे दादी या आंगन में बैठी रहती है, 2-2.5 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में। तो हम आए तो दादी वाहन बैठे थे, तो दादी ने कहा आप जानते हैं दादी कैसे बुलाती है मुझे, ऐसे 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 कहा। मैं तो डर गया, बुला रहे तो दादी ने कहा महेश तुम अभी तक जगदीश के पास गए नहीं हो। मैं चुप रहा, तो तेरे कारण मुझे 1 घंटा उसका क्लास सुनना पड़ा, जाओ अभी जाके माफी मांगो और शुरू करो। तो उतना मेरे आंखों में आंसू आ गया, मेरे कारण दादी को सुनना पड़ा। फिर वहां जाके यहीं थे सुदर्शन भवन में जाके मिला भाई साहब, ओम शांति आ गया। दादी ने कहा है, हाँ ठीक है, तो क्या सेवा करने? तो रोज तुम ज्ञान सरोवर में, ऑफिस था उनका, रोज मैं यहां रहता था ज्ञान सरोवर जाया करता था। ज्ञान सरोवर जाने से पहले 6 बजे मुझे एक फोन करना, कोई अर्जेंट काम है तो बता दूंगा, नहीं तो जो बुक्स उन्होंने मैटर लिख के दिया था उसको करता रहा। तो रोज सुबह 6 बजे मैं उनको गुड मॉर्निंग कहने का भाग्य मिला। देखो उनसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन मुझे सुबह सुबह बाबा के साथ उनको भी गुड मॉर्निंग करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो उसके बाद उन कई किताबें, भारतीय त्योहार है, ज्ञान निधि है, ज्ञान माला है, ज्ञान प्रवाह है, कई सारे किताब उन्होंने मुझे बनाने का अवसर दिया। तो उनकी एक विशेषता थी, तो मैं डरता था ना वो कहीं वो क्या कहेंगे, लेकिन उनका इतना बड़ा विश्वास था मेरे ऊपर कि एक बार उन्होंने मैटर दे दिया, ये नहीं पूछते थे कब मिलेगा कब तैयार होगा, नहीं, वो कहने से पहले तैयार करके हम छपवा के दे देते थे। तो इस प्रकार वो चलता रहा, लेकिन वो जितना स्ट्रिक्ट है उतने बहुत सरल और हंसी मजाक वाले भी होते। आपने कभी वो हंसी मजाक करते हुए देखा है? देखा होगा, सुना होगा। तो एक बार उन्होंने दिल्ली से आते समय ये बूंदी के लड्डू लेके आए थे, एक बॉक्स लेकर के मुझे बुला के दिया। तो देख ऐसा नहीं था, देखो ये लड्डू है ले लो, ऐसा नहीं, लड्डू खोला, अब डब्बा खोला, लड्डू दिखे, देखो भाई ये लड्डू है। तो मैं कहा भाई साहब बहुत है, अरे डरो नहीं, ये मत सहना है ना, ये कहावत है ना, दिल्ली के लड्डू खाए तो भी पछताना पड़ेगा, ना खाए तो भी पछताना पड़ेगा, ऐसा मुझसे वो कहावत सुना के उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, एकदम ताजा लड्डू है खा लो, ऐसा बोला। मैंने कहा, फिर मैंने उनको पूछा भाई साहब ये कहावत क्यों आया, खाने से भी पछताने कैसे और ना खाने से भी पछताने कैसे? वो कहते ये तो जो हलवाई होता है ना दुकान में, कई समय से वो पड़ा रहता है, बूंदी बिकता नहीं है, वो बूंदी को क्या करेगा, दोबारा वो तल के उसका कलर डाल के फिर मीठा डाल के एकदम फ्रेश बनाता है। जब पुराने चीज खाते हो तो क्या होता है, पेट में दर्द होता है, और वो इतना सुंदर रहता है कि खाए बगैर रह नहीं सकते, इसलिए ऐसा कहावत आया, ऐसा सुनाते थे। तो इस प्रकार के जब भी आते थे वो कुछ न कुछ लेके आते थे। एक बार हम तो मैं साउथ में ये गाजर का हलवा बनता नहीं, हमें पता ही नहीं था, एक बार गाजर का हलवा लेके आए तो डब्बा दिया, वो तो पूरा घी जम गया था, फ्रिज में रखा होगा, ये खाओ भाई, ये क्या है भाई साहब ये गाजर का हलवा? तो नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, हम खाए नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो देसी घी में बना हुआ है, तुम भी खाओ और सबको खिलाओ। मतलब इस तरह वो छोटों को इतना प्यार देते थे, प्यार देते कि उनको जो थकावट होती थी बिल्कुल ये नहीं होता। अच्छा, उनके साथ बाबा का कनेक्शन कितना गहरा था, एक और एग्जाम्पल मैं सुनाता हूं। जब दिल्ली में थे हम लोग ज्ञानामृत बना रहे थे, एक महीने का ज्ञानामृत पूरा हो गया। टाइम हो गया, बोर तो नहीं लग रहा है? तो 32 पेज का ज्ञानामृत तैयार कर दिया, क्योंकि वो जब वो एक बार वहां इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था तो हम बाहर सारा टाइप करवाते थे, प्लेट बनाते थे, लेकिन इमरजेंसी कारण बाहर जा नहीं सकते थे। तो मैं वो वहां कंप्यूटर था लेकिन कुछ नहीं था, तो मैं एक रात पूरी बैठ के किताब लाके पढ़ के हिंदी टाइपिंग सीखा मैंने कंप्यूटर पर। देखा नहीं तो पहली बार सीखा। तो देखो बाबा अपना काम कराने के लिए बस करने वाले चाहिए, वो सब कुछ कला भी देता है शक्ति भी देता है। तो अहिंदी भाषा वाला हिंदी टाइपिंग एक रात में सीख के अगले दिन से हिंदी टाइपिंग करना सीख लिया। तो तब से हिंदी इंग्लिश मैगजीन बनाना मेरी जिम्मेदारी हो गया। तो एक बार क्या हुआ, तो पूरा 32 पेज टाइप हो गए तो मैटर, तो प्रिंटिंग जाना है तो वहां का डेट फिक्स होती है पोस्टिंग की, आपको पता है। अगर वो डेट उस दिन नहीं डालेंगे तो 4 गुना पैसा डालना पड़ता है, 25 पैसे के बदले 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये एक मैगजीन के लिए। तो फाइनल हो गया था, तो अगले दिन ऑफिस में बैठा था तो आतम भाई आया, आके भाई जगदीश भाई बोलते हैं तो ये मैगजीन जो तैयार हुआ है वो रोक दो, दूसरा मैटर देंगे, वो मैगजीन में टाइप करके छापना है। मैंने कहा ये मेरे से नहीं होता, अभी रात दिन बैठ के सारा 32 पेज टाइप करके सेटिंग करके फाइनल किया है, अभी उसको छोड़ो दूसरा बनाओ, ऐसे कैसे होता है। मैंने कहा आप कहीं से करा लो, तो वो ऐसे ही जाके उन्होंने फोन पे बता दिया जगदीश भाई, वो लड़का ऐसे ऐसे बोलता है तो बुलाओ उसको। तो मैं गया तो ओम शांति भाई साहब, महेश भाई देखो मुझे, मैं जानता हूं 32 पेज टाइप करना वो एक दिन में होता नहीं, लेकिन मुश्किल है, मजबूरी है। उनके नहीं भाई साहब ये कैसे हो सकता है। तो देखो भाई मैं भी ऐसे बोला, लेकिन ऊपर वाला चुप नहीं बैठ रहा है ना, वो मान ही नहीं रहा, जैसे तुम नहीं मान रहे हो वो मेरी बात वो नहीं मान रहा, वो कहता है इसको मैटर बदलो, मैटर बदलो। वो बाबा बोलते मैं क्या करूं, अच्छा बाबा बोलते तो मैं भी क्या करूं, ठीक है मान लिया। फिर जिन रात लगा के वो मैगजीन किया, तो मैंने पूछा भाई साहब ऐसे किस फट से आप चेंज किया। नहीं मैं बाप सुबह अमृत पड़े मैं योग कर रहा था, बाबा ने कहा इसको ये इसको रोको, ये मैटर शायद कॉन्फ्रेंस वगैरह होने वाले थे तो उसके बारे में आप लिखो और ये बनाओ, तो बनाया। तो वो उनका जो है ना बाबा के साथ संबंध बहुत नेचुरल रहता था। तो वो कहते थे जब 2 बजे उठ के योग करने बैठते थे अपने बेड पर, फट से बाबा उनको टचिंग करते थे, ये लिखो। वो बैठे बैठे करने बैठे योग, लेकिन वह बेड पर ही बुक लिखना शुरू करते थे। अच्छा उनकी जो जो भी लिखना है वो इस तरह उसका फिट एकदम एग्जैक्ट होता था कि जैसे देखो आप वो लिख रहे थे या सुदर्शन भवन समझ लो लिख रहे, लिखते लिखते अगर कोई आके फोन आ गया बात किया तो लिखने वालों को लिंक टूटता है ना। हम लोग लिखते हैं कुछ लिखने बैठते, कोई सोच रहते सोच के बैठे रहते हैं, तो कोई बीच में इंटरप्ट हो गया, कोई आया फोन आया बात किया 2-3-5 मिनट चला गया, तो आपको क्या लगता है मैं क्या लिख रहा था, वो तो याद करेंगे ना। नहीं, उनका फ्लो इतना होता था जब भी छोड़े फिर उसी पॉइंट पर फिर शुरू, वो सोचते नहीं थे, जो लिखना था वही लिखना शुरू। इतने उनके जो मेमोरी पावर जिसको बोलते हैं ना वो है। तो मेमोरी पावर के तो बात आई, तो और एक बात मुझे याद आती है, भाई साहब की जो लास्ट जो किताब थी वो कौन सी थी जानते, कार्टून और कहावतें। मेरे को 3 किताब मेरे हाथ में थे उस समय, एक कार्टून और कहावतें और महाभारत और गीता का इंग्लिश और ब्रह्मचर्य वाली इंग्लिश, 3 किताब थी। तो मैंने कहा भाई साहब इन तीनों में कौन से बनाए, अपने उनका कार्टूनर कहा होते बनाओ, तो कार्टूनर कहा होते वो 1965 से वो छपी है ज्ञानामृत में कार्टून्स, तो सारे कार्टून कहाँ ढूंढे, वो जो ओरिजिनल जो है ना वो थोड़े मिले। तो मैंने पूछा भाई साहब वो कहाँ से लाओ, तो वो ये सारे ज्ञानामृत है ना 65 से लेकर सबको ढूंढो एक एक पेज, तो एक एक पेज को खोल खोल के उसको स्कैन करना, एक एक मैगजीन एक एक साल के सारे एक 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 स्कैन करना करना, करीब सब कुछ स्कैन किया, उस स्कैन करके प्रिंट करके उनको दिखा भाई साहब इतना स्कैन, वो देखते रहे देखते रहे देखते रहे, महेश भाई ये कार्टून इसमें नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैंने पूरे 1965 से लेकर जहां तक छपे उन सबको मैंने एक एक पन्ना खोल के मैंने स्कैन किया है, नहीं एक खाली। तो कौन से है भाई साहब, वो एक चित्र है ना वो भिखारी बैठा हुआ है, फटक चंद गिरधारी न थाली न कटोरी। तो भाई साहब नहीं है, तो उन्होंने साल बताया कौन सा साल में है, इस साल में तो मुझे अभी उन्होंने बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कब छपा था वो बताया, ये 2001 की बात है शायद 70 या 60 में छपा होगा वो कार्टून, वो याद था ये महीने का या इस साल में है देख लो। तो मैंने उसको जाके देखा, लेकिन वो दो पन्ना चिपक गया था, उसको खोला वो कार्टून मिला। मुझे आश्चर्य लगा, देखो कितनी पावरफुल मेमोरी है इनकी। तो इस तरह हुआ, तो बस आखिरी जब वो बीमार पड़े तो उस समय उनका और एक बड़ा काम था, साकार मुरलिया उन्होंने दिया था मेरे को, उसको रिसर्च करके करीब 108 टॉपिक्स उन्होंने दिया था। बेड पर लेटे हुए हैं फिर भी उन्होंने क्या तीन ग्रुप बनाए, एक पांडव वन का, एक ज्ञान सरोवर का, एक हॉस्पिटल का, 10-10 लोगों के एक भाई बहनों का ग्रुप बना के वो टॉपिक दिया आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, तीन लोक के बारे में, त्रिमूर्ति के बारे में, ये सारे। तो उसमें फिर अलग आत्मा क्या है, बाबा ने जो बताया ना साकार मुरली में आत्मा निर्लेप नहीं है, सारे लिखा के ग्रुप बना के उनको दिया रिसर्च करने के लिए। तो उन्होंने मुझे मुरली दिया, मुरली दे के भाई ये मुरली है इनको करो। तो भाई साहब कब तक होना चाहिए, 3 महीने में होना चाहिए, 3 महीने में वो जो 5 साल की मुरली है ना उनको टाइप करना, उनको करेक्शन करना, फिर सबको बांट के पॉइंट्स निकलवाना, संभव है? तो मुझे नहीं पता, हाँ ठीक है भाई साहब हो जाएगा। तो जब वो टाइप करने में ही 1 साल लग गया, 4 लोग उन्हें टाइप किया, फिर उसको करेक्शन करना, फिर उसको सबको एक एक व्यक्ति को एक एक पॉइंट देना, जैसा आप है आपको परमात्मा का नाम के बारे में सिर्फ 1 हफ्ते के मुरली देना, उसको सिर्फ बाबा अपने नाम के बारे में क्या क्या बताए वो लिखना, फिर एक को दे परमात्मा का धाम, तो उसको दे भाई परमात्मा का धाम ही ढूंढना इस सारे मुरली में, मुझे वो पेज नंबर लाइन नंबर 1, 2, 3 लिख के देना। ऐसा कर करके सारे टॉपिक्स निकलवाया। तो बीच बीच में जब मधुबन वो आते थे बेड पर लेटे हुए तो सबको उमंग उत्साह भरते थे, देखो आप जो करके देंगे ये इतनी सेवा होगी इतनी सेवा। आखिर 3 साल के बाद वो तैयार हुए, तैयार करके मैंने उसको बाइंड करके उनको दिया। इतना खुश है महेश भाई, मुझे एक काम 10 साल पहले मिलना चाहिए था, मैंने बहुत कुछ कर सकता था, अभी मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर मैंने पूछा भाई साहब इतना मेहनत करके कराए क्यों जी, ईश्वरीय ज्ञान कोश नाम से बड़े बड़े किताबें लिटरेचर काउंटर में मिलते, 3 किताब बनाए, परमात्मा के बारे में 2 है। फिर उस समय मैंने पूछा भाई साहब इस किस लक्ष्य आपने करवाया, उन्होंने बोला देखो दुनिया में एनसाइक्लोपीडिया होते हैं, जानते हैं एनसाइक्लोपीडिया क्या होते हैं, विश्वकोश बोलते हैं, एक शब्द होता है वो शब्द कब पैदा हुआ किस लिए पैदा हुआ और अर्थ क्या है, जैसा तारा है सितारा, वो तारे के बारे में पूरा का पूरा उसमें मिलता है विज्ञान में। उसी प्रकार मैं ये आध्यात्मिक एनसाइक्लोपीडिया बनाना चाहता था, जैसे समझे आत्मा, तो आत्मा के बारे में पूरा डिटेल्स, आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा के गुण रूप क्या है, ये सारा सारा आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना इस ज्ञान में हमारा पूरा ज्ञान सब स्वीकार नहीं करती। किसी को परमात्मा के बारे में अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट करेंगे, कोई आत्मा के बारे में अच्छा लगता है वो स्वीकार करेंगे, कोई योग के बारे में लगता है वो स्वीकार करेंगे। ऐसे लोगों को अगर वे एक हम परमात्मा के बारे में बना दिए एनसाइक्लोपीडिया, उसमें सब कुछ होना चाहिए इस तरह का। तो मैंने कहा भाई साहब क्या करें? तो भाई साहब जाने के बाद सबसे पहला किताब वही बनाया। तो मैंने कहा देखो मैं तो उन जैसे बना नहीं सकता, थोड़ा बहुत कोशिश किया। तो उसमें जो परमात्मा का नाम रूप देश काल कर्तव्य ये है, जैसे परमात्मा का नाम है सोमनाथ, बाबा बोलते सोमनाथ के जितने भी पॉइंट से उसमें एक जगह बाबा का डायरेक्ट महावाक्य है, उसमें कोई मिक्स नहीं है, वो डाल के बगल में एक बॉक्स बनाया। तो सोमनाथ जो है ना, सोमनाथ टेम्पल, वो कब निर्माण हुआ, तो उसको कैसा उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर कैसा हुआ क्या, वो सारा उसका डिटेल्स है, उसका महत्व। तो सुनने में आता है कि सोमनाथ का जो शिवलिंग है वो हीरे कथा बता रहे, और हीरे कथा वो कैसा था, भूमि तल पर नहीं था, वो ऊपर था बता रहे, बीच में ऐसा खड़ा किया, तो जो मैग्नेटिक पावर से उसको उस तरह। और जो गजने भी जो है ना, एक ही शिवलिंग को, वो अलग अलग नहीं कि एक ही शिवलिंग को कई बार काट के लेके गया, इतना बड़ा वो हीरे का शिवलिंग था बता रहे, वो सारे कहानी उसमें है। तो बाबा कहते परंधाम बहुत दूर है, मैं कितना दूर से आया हूं ये कहते ना, अब साइंटिफिकली कितना दूर है उसमें एक एक बॉक्स में एक्सप्लेनेशन है। वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम प्रकाश स्पीड से रॉकेट में जाते हैं तो कितना समय, कितना दूर, कहां तक जा सकते हैं, तो वो कहते हैं जितने भी आप आकाश गंगा पार करके जाओ, पेट्रोल लेके जाओ, लेकिन वहां पहुंच नहीं सकते, पहुंचते तो वापस आ नहीं सकते। तो उसका सारा कैलकुलेशन परंधाम के बारे में। फिर बाबा कहते 24 अवतार, वो 24 अवतार क्या है, और उसका नीचे उसका कंक्लूजन सार, इस तरह से वो किताब बने, उसी प्रकार आत्मा के बारे में। तो इस तरह उनका जीवन एक आदर्श था। तो लास्ट एक घटना मैं बता देता हूं, अंतिम मुलाकात मेरी उनके वो शरीर छोड़ने से एक हफ्ते पहले यहां सुखधाम में हुआ। तो उन्होंने खास हमारे लौकिक पिताजी की तबीयत खराब थी, एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, मैं बोलने गए, परमिशन लेने गए थे भाई साहब मैं मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे एक टोली बॉक्स दिया पिताजी को देना, और उनको देख के हमारी याद देना, तो आके मिल के मेरे को बताना। तो मैं वापस आया, फिर मिलने गया, तो भाई साहब अकेले बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, मैं जाके ओम शांति कहा, तो फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के वो बात मुझे भी कान में गूंजती है। उन्होंने बोला महेश भाई आपने तो बहुत अच्छी सेवा की, आपके सिर पर बाबा का हाथ है, और वहाँ ये थे बादाम थे, बादाम वो उठाने गए, वो पहुँच नहीं रहा था, दूर था। मैंने कहा भाई साहब ने मैं तकलीफ होती है मैं लेता हूँ, लेने गया, दो तीन लिया मैंने, उससे क्या होता है। तो फिर उन्होंने पूरा कटोरी उठा के मुष्टि में मेरे को दिया, देखो बहुत बहुत धन्यवाद कह के एक गुलदस्ता दिया, ओहो मेरा लास्ट है।
ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी लिटरेचर के माध्यम से जगदीश भाई को पहचानते हैं। कोई भी व्यक्ति इस महान व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए कितनी साधना की जाती है, साधना को साधन तो दिखाई देते हैं, साधना जो समीप होता है उसी को दिखाई देता है। भाई साहब ने अपनी समीप अपनी नजदीक की आंखों से उनकी साधना को देखा तो स्पष्ट दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया, बहुत सबको अच्छा लगा भाई साहब का अनुभव, दिल से आपका एक सभी एक हाथ की ताली बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद। 2001 मई 6 मई ना भाई साहब, 12 मई,
ठीक एक महीने पहले, देखो ये जून 12 है ना, मई 12, 2001।
आप लोगों में सिर्फ कोई आया होगा ना, भाई साहब का जब अंतिम यात्रा निकली थी संदेश भी आया था, हम लोग सभी आए थे भाई साहब के इसमें सबने कहा इतना सारा ब्राह्मण परिवार मेरे लिए आ गया, हमें नहीं पता था इतना सारा इकट्ठा होता है, संदेश में भेजा था। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद। सारा चित्र ऐसे महान विभूतियों के, भक्ति मार्ग में तो संत महात्माओं के पढ़ते थे और हिस्ट्री में महापुरुषों के पढ़ते थे, इस ज्ञान मार्ग में ऐसे महान विशेष देवात्मा महात्माएं फरिश्ते कैसे बने, इन सब की कहानियां हम सबके जीवन को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए बहुत बहुत आपको भी, बहुत सारे भाई बहने जानते नहीं थे, पता नहीं पूछ रहे थे महेश भाई कौन है, हमने कहा देखो सात का अनुभव, अनुभव ऐसी चीज है उनसे रिलेट कर लेती है, चाहे कितना भी शब्दों में हम सुनाए पता नहीं पड़ता है, लेकिन अनुभव के माध्यम से उनकी समीपता का हम सब ने अनुभव किया। दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।